আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা মান কানা নাবিয়্যাম ওয়া আদাম বাইনাল মায়ে ওয়াত তিন ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি আজমাইন আম্মা বাদ ফাআউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম ইন্না আল্লাহা ওয়া মালায়েকাতাহু ইউসাল্লুনা আলান নাবী يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد صلاه دائمه بدوام الملك الحي القيوم আজ হাম আপ হযরাত কে সামনে এক عظیم علمی اور روحانی شخصیت حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں بیان کریں گے, جو شیخ طریقت بھی تھے اور رہنمائے شریعت بھی, واقف اسرار حقیقت و معرفت بھی, علم ظاہری اور علم باطنی دونوں کے جامع تھے. کس طرح انہوں نے علم دین حاصل کیا, کس طرح طریقت میں قدم رکھا, اور کس طرح ایک مرد قلندر کی نگاہ نے انہیں کیا سے کیا بنا دیا, ان کے اس ذکر مبارک کا انتخاب اس لیے بھی کیا کہ آج پانچ جماد الثانی, یہی ان کی تاریخ وصال حضرت مولانا روم رحمت اللہ علیہ کی. اس لیے ہم نے یہ سوچا کہ اللہ کے اس نیک اور برگزیدہ بندے کے حالات بیان کیے جائیں تاکہ ہمارے ایمان تازہ ہو جائیں اور مولانا روم کا فیض, باطنی فیض حاصل ہو جائے. آپ کی ولادت باسعادت شہر بلخ میں 604 ہجری مطابق 1207 عیسوی میں ہوئی. والد ماجد کا نام سلطان بھاؤ الدین رحمت اللہ علیہ, وہ بھی اپنے وقت کے ایک جلیل القدر بزرگ تھے, عالم دین تھے اور اکابر علماء اور مشائخ ان سے کسب فیض کرتے تھے. مولانا روم رحمت اللہ علیہ مادر زاد ولی تھے. آپ کے والد گرامی فرماتے ہیں کہ میرا بیٹا جلال الدین بچپن میں دوستوں کے ساتھ کھیل رہے, مکان کی چھت پہ چڑھ گئے, بہت سے دوست ان کے ساتھ ہیں, تو کسی نے کہا آؤ ایک چھت سے دوسری چھت پہ چھلانگ لگائیں, جیسا کہ بچوں کا طریقہ ہوتا ہے اچھل کود کرتے ہیں, ایک چھت اوپر ہے تو دوسری نیچے ہے تو اس سے کود کے ادھر آ جائیں, ادھر سے کود کے ادھر آ جائیں, سب مل کر یہ کرتے ہیں. تو مولانا روم نے فرمایا کہ یہ کام تو کتا بلی کرتے ہیں, اچھل کود کرنا تو ہمارا کام نہیں ہے کہ اچھل کے ادھر چلے گئے وہاں سے کود کے ادھر آ گئے, ہم یہ کام کیوں کریں, اگر ہمت ہے تو آؤ اس سے بڑھ کر کام کریں. انہوں نے کہا کیا کام کریں, آؤ آسمان کی طرف چلیں. بچے حیران ہوئے, آسمان کی طرف چلیں, ابھی یہ سوچ رہے تھے کہ دیکھا کہ مولانا غائب ہو گئے, آنکھوں سے اجل ہو گئے. بچے حیران ہیں کہ یہ ہمارا دوست جلال الدین کہاں گیا. انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا. جب بچوں نے شور مچایا کچھ دیر کے بعد پھر نمودار ہو گئے. اب فرمایا کہ جس وقت تم لوگ کھیل رہے تھے اور میں نے کہا کہ آؤ آسمان کی سیر کو چلیں, آسمان کی طرف چلیں, تو فرشتوں کی ایک جماعت آئی اور مجھے آسمان کی طرف لے گئی, اور میں نے وہاں جا کر عجائبات اور غرائب کا مشاہدہ کیا, اور جب تم لوگوں نے شور مچایا تو مجھے واپس چھوڑ کر چلے گئے. یہ ان کی بچپن کی کرامت. آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے والد گرامی سے حاصل کی जिनका नाम था सुल्तानुल उलमा सुल्तान भाउद्दीन रहमतुल्लाह। उसके बाद एक बुजुर्ग सैयद बुरहानुद्दीन मुहक्किक, जो अपने ज़माने के एक जैयद आलिम दीन थे, उनकी खिदमत में हाजिर हुए और दीगर उलूम फ़नून उनसे हासिल किए। और ज़हानत का ये आलम था कि जो चीज़ सुनते थे उसी वक्त ज़हन नशीन हो जाती, और ज़माने तालिबे इल्मी में ही कैफियत ये थी कि जो मसला दीगर उलमा हल ना कर सके वो मौलाना रूम हल कर दिया करते। अभी पढ़ रहे हैं, अभी मुकम्मल तहसीलें नहीं हुई, दरस निज़ामिया की तकमील नहीं हुई, उलूम फ़नून की तकमील नहीं हुई, लेकिन ज़हानत का यह हाल है कि जो मसला दीगर उलमा हल ना कर सकें वो कहते जाओ इनसे मालूम करो, और आप उसी वक्त उस मसले को हल फरमा दिया करते। फिर इल्म के हुसूल के लिए आपने सियाहत फरमाई। विलादत हुई शहर बल्ख में, उसके बाद नेशापुर तशरीफ़ ले गए, वहाँ से बगदाद, फिर हिजाज मुकद्दस, फिर शाम, फिर दीगर मुल्कों का सफ़र किया सिर्फ इल्म के हुसूल में, और आखिर में मुल्क शाम तशरीफ़ लाए और वहाँ शहर हल्ब में एक मदरसा था, मदरसा हलाविया, उस मदरसे में दाखिल हुए और वहाँ के एक जैयद आलिम दीन हज़रत शेख कमालुद्दीन अदीम हल्बी रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनसे आपने कस्बे फैज़ किया। इल्म दीन हासिल करते रहे और तमाम उलूम और फ़नून के जामे हो गए, मुकम्मल दसरस हासिल कर ली। लेकिन याद रखिए, इल्म की दो किस्में हैं। कितनी किस्में? दो, एक इल्म ज़ाहिर और एक इल्म बातिन। इल्म ज़ाहिर का ताल्लुक किताबों से है और इल्म बातिन का ताल्लुक सीने से है। इल्म ज़ाहिर किताबों से हासिल होता है और इल्म बातिन सीना बसीना चलता है। किताब आदमी पढ़ ले, इल्म हासिल हो गया, उस्ताद ने किताब पढ़ा दी, इल्म हासिल हो गया, लेकिन इल्म बातिन किताबों में नहीं मिलता, वो सीना बसीना मुंतकिल होता। और मौलाना के साथ भी यही हुआ, इल्म दीन हासिल किया, मुकम्मल दस्तरस हासिल कर ली और उस ज़माने के तमाम उलूम और फ़नून के माहिर हो गए, पढ़ाना शुरू कर दिया। आप वहाँ से तशरीफ़ लाए अपने वालिद गिरामी के विसाल के बाद, कहाँ पर? कूनिया। कूनिया एक बहुत खूबसूरत शहर है जो तुर्की में है। इस मर्तबा जब हम हॉलैंड से वापस आए तो तुर्की में क़याम किया और चार दिन हम तुर्की में रहे, और इसी गर्ज से कि मौलाना रूम के मज़ार पे जाएंगे। तो इस्तांबुल, जिसका पुराना नाम कुस्तुनतुनिया, नया नाम इस्तांबुल, वहाँ रुके और वहीं से फ़्लाइट ली कूनिया की। इस्तांबुल से एक घंटे की फ़्लाइट और सीधे मौलाना रूम के मज़ार पर पहुंच गए। शुरू से ख्वाहिश थी कि किसी तरह उनके मज़ार मुबारक पर हाजिरी दी जाए, उन्होंने करम फरमाया और हम हाजिर हो गए। सख्त सर्दी, टेम्परेचर माइनस, कांप रहे, और वहां पर लोगों को आदत है मौसम की, वो सब ग्लव्स पहने हुए, मोजे पहने हुए, ऊपर से ओवरकोट पहने हुए, और हम इन तमाम चीजों से बेनियाज, अंदाज़ा नहीं था कि इतनी सर्दी होगी। एक जैकेट ले ली, एक सदरी पहन ली, मोज़े जूते पहन के निकल गए, लेकिन जब पहुंचा तो वहाँ जब पहुंचे तो सख्त सर्दी थी। खैर बहरहाल वहाँ से एक दुकान से एक स्वेटर ख़रीदा, तब जाके कुछ जान में जान आई। बहरहाल तो कूनिया बड़ा खूबसूरत शहर, और मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह ने कूनिया के बारे में फरमाया कि कूनिया को हमने मदीनतुल औलिया का लकब दिया, कि कूनिया जो है ये औलिया का शहर है। और फिर फरमाया कि यहाँ पर कयामत तक वली पैदा होते रहेंगे, कूनिया में वली पैदा होते रहेंगे। और फिर मजीद फरमाया कि ये शहर तमाम आफात व बलियात से महफूज रहेगा और कभी भी ये शहर मुकम्मल तबाह नहीं होगा, مولانا روم کی دعا. خوبصورت شہر, ہر طرف سبزہ ہی سبزہ ہے, صاف ستھری سڑکیں ہیں, چوڑے راستے ہیں, بہترین دکانیں ہیں, شاپنگ سینٹر ہے, لیکن یہ چیزیں تو دیگر شہروں میں بھی ہیں. آپ یورپ نکل جائیے تو وہاں بھی ساری چیزیں ہیں. جو چیز پوری دنیا کو کونیا کی طرف کھینچتی ہے وہ اللہ کے اس ولی کا مزار ہے, جس میں کشش ہے کہ دنیا وہاں چلی جا رہی. تو مولانا روم رحمت اللہ علیہ عالم دین بن گئے, پڑھانا شروع کر دیا, ہزاروں مولانا کے شاگرد دور حدیث پڑھا رہے ہیں, علوم و فنون پڑھا رہے ہیں, دیگر چیزیں پڑھا رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کا رخ موڑنا تھا اور علم لدنی علم باطنی عطا کرنا تھا, تو ایک ولی کو بھیج دیا جن کا نام حضرت شیخ شمس تبریز رحمت اللہ علیہ. مجذوب بھی تھے, سالک بھی تھے. کئی قسم ہے نا, ایک ہوتا ہے سالک, ایک ہوتا ہے مجذوب, ایک ہوتا ہے مجذوب سالک, اور ایک ہوتا ہے سالک مجذوب. سمجھ گئے بات؟ سالک راہ سلوک طے کرنے والا, جو دنیا میں رہے, دنیاوی کام بھی انجام دے, شادی بھی کرے, اولاد بھی ہو, کاروبار بھی کرے, ساری چیزیں کرے اور ساتھ ساتھ راہ سلوک بھی طے کرے, وہ سالک. دوسرا ہے مجذوب, جو دنیا میں رہ کر دنیا میں نہیں, بظاہر دنیا میں ہے لیکن دنیا سے کوئی تعلق نہیں, ڈائریکٹ لا لگی ہوئی اللہ تبارک و تعالیٰ سے, اس کے جلووں میں گم ہے, اس کو پتہ نہیں دنیا میں کیا ہو رہا, وہ مجذوب ہے. لیکن ایک ہے سالک مجذوب, کہ ہے تو سالک لیکن کبھی کبھی اس کے اوپر جذب کی کیفیت طاری ہوتی, کبھی کبھی. اور ایک ہے مجذوب سالک, کہ ہے تو مجذوب لیکن کبھی کبھی ہوش میں بھی آ جاتا, کبھی ہوش میں آ جاتا, اس کیفیت سے باہر آ جاتا. یہ قسمیں ہیں. تو حضرت شمس تبریز رحمت اللہ علیہ سالک مجذوب تھے. مولانا روم کے واقعے میں لکھا ہے کہ آپ کتابیں لیے بیٹھے ہیں, مشہور واقعہ, شاگرد بیٹھے ہیں, شمس تبریز رحمت اللہ علیہ پہنچ گئے. کہا مولانا یہ کیا ہے؟ اینچیست, فارسی میں پوچھا یہ کیا ہے؟ مولانا نے فرمایا این قال است شما نمی دانی, یہ قال ہے, تم اسے نہیں جانتے. اچھا, کتابیں اٹھائیں اور حوض میں ڈال, اور کتابیں بھی قلمی, ہاتھ سے لکھی ہوئی, اگر چھپی بھی ہو تو وہ پانی میں نہیں بچ سکتی, تو جو ہاتھ سے لکھی ہوئی وہ کہاں سے بچے, ساری سیاہی زائل ہو جائے, ختم ہو جائے. مولانا کو غصہ آ گیا, پریشان ہو گئے, یہ کیا کیا تم نے, اتنی میری محنت, ہاتھ سے لکھی ہوئی قلمی کتابیں اور پانی میں ڈال دی, یہ ایسا سرمایہ ہے یہ حاصل نہیں ہو سکتا. شمس تبریز نے مسکرا کر دیکھا, بس علم یہی ہے, ہاتھ ڈالا اور کتابیں نکال کر دے دی, اور کتابوں سے خاک جھاڑ کر دے دی. پانی سے کتاب نکلے گی تو پانی جھڑے گا یا خاک جھڑے گی؟ اب مولانا حیران ہوئے, یہ کیا ہوا, قلمی کتابیں پانی میں گئیں اور وہاں سے نکالا تو خاک جھاڑ کے مجھے دے رہے. حیران ہوئے, زبان سے نکلا اینچیست, یہ کیا ہے؟ شمس تبریز نے فرمایا این حال است شما نمی دانی, یہ حال ہے, اسے تم نہیں جانتے. انہوں نے کہا تھا نا یہ قال ہے, انہوں نے کہا یہ حال ہے, شما نمی دانی, تم نہیں جانتے, اور یہ کہا وہاں سے چل دیے. مولانا نے کہا یہ حال کیسے حاصل ہوگا؟ فرمایا جب کسی مرد حال کے قدموں میں پہنچ جائے گا تب حاصل ہو. اپنی پگڑی اتار دی اور مرد قلندر کے پیچھے چل دیے. درس و تدریس ایک طرف رہ گیا, قال ایک طرف رہ گیا, حال کے پیچھے لوگ دیکھ رہے ہیں. اپنے زمانے کا ایک جید عالم دین, جس کے ہزاروں شاگرد, سینکڑوں شاگرد, ایک مرد قلندر کے پیچھے چلا جا رہا, کیا ہوا؟ کہتے نہیں, اس مجذوب نے ہمارے استاد کو گمراہ کر دیا. شاگرد کہتے ہمارے استاد کو گمراہ کر دیا. कितने अच्छे उस्ताद थे, हमें पढ़ाते थे, हदीस पढ़ाते थे, उलूम व फ़नून पढ़ाते थे। एक कलंदर आया, एक मजजूब आया, उसने गुमराह कर दिया। देखो उनके पीछे लग गए, दरसो तदरीस छोड़ दी। लेकिन वो नहीं जानते थे कि मौलाना के दिल में इश्क जो एक चिंगारी थी, शम्स तबरेज ने उसको भड़का दिया, आग बन गई, शोला बन गई, रोशन हो गई। पहले सिर्फ काल था, अब हाल आ गया। एक होता है ना काल और एक होता है हाल। हम सब क्या हैं? साहिबे काल, साहिबे काल, बातें ही बातें करते हैं, बातें करते हैं ना, इसके अलावा तो कोई काम नहीं करते, हम बातें करते हैं, साहिबे काल और बुजुर्गान दीन साहिबे हाल। हम साहिबे काल हैं और जो वहां लेटे हुए हैं साहिबे हाल। हम साहिबे काल, मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, काल रा बोगुजार मर्द हाल शो, बातों को छोड़ मर्द हाल बन। काल रा बोगुजार मर्द हाल शो, पेशे मर्द हाल रा पामाल शो। और तू मर्द हाल नहीं बन सकता जब तक किसी मर्द हाल के पास जाकर अपने आप को उसकी जूतियों की खाक ना बना ले और ये ना समझ ले कि हाल किसे कहते और काल किसे कहते। मर्द हाल बन ही नहीं सकता। हम कहते जी हम तो साहिब हाल है। किसी ने कव्वाली में नाचना शुरू कर दिया था कि जी साहिब हाल, देखो हाल आ रहा। ऐसे साहिब हाल तो बहुत फिरते हैं, उसको साहिब हाल नहीं कहते। हम साहिब हाल नहीं, हमारा तो हाल ही बहुत खराब, बहुत बुरा हाल। साहिब हाल अलग होता है, जिस पर कैफियत तारी होती है और उस पर अनवार तजल्लियात का जहूर होता है और वो फिर उन तमाम चीजों का बेहिजाबाना मुशाहिदा करता, वो साहिब हाल। हम तो साहिब काल, बातें ही बातें, काल ही काल। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह को एक मर्द कलंदर ने साहिब काल से साहिब हाल बना दिया। शम्स तबरेज के पीछे चले जा रही, उनके हाथ पर बैत की और फिर सिलसिला शुरू हुआ। 40 दिन दोनों एक कमरे में बंद रहे, चिल्ला कशी हुई और सिर्फ फल इस्तेमाल किए गए, कोई खाना वाना इस्तेमाल नहीं, रोटी का इस्तेमाल नहीं, सालन का इस्तेमाल नहीं, किसी चीज का नहीं। 40 रोज तक सिर्फ फल खाए और उसके बाद जब हुजरे से बाहर निकले तो कैफियत और मुख्तलिफ थी। शागिर्दों ने कहा इस मजजूब ने, इस फकीर ने हमारे उस्ताद को गुमराह कर दिया, हमारा उस्ताद हमसे छीन लिया। और बाद रिवायतों में यह आया कि वो दुश्मन हो गए हजरत शम्स तबरेज रहमतुल्लाह अलैह, इनको मार दो, इस फकीर ने हमारे उस्ताद को गुमराह किया, इसको खत्म कर दो। उनके पीछे लग गए, उल्टी सीधी बातें करने लगे, उनको खत्म करने के मंसूबे बनाने लगे। हजरत शम्स तबरेज रहमतुल्लाह अलैह ने जब यह देखा तो आप खामोशी के साथ वहां से रुखसत हो गए। किसी ने कहा कि बल्ख चले गए, किसी ने कहा नेशापुर चले गए, किसी ने कहा बगदाद चले गए, किसी भी इलाके में खामोशी के साथ। अब मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह की हालत अजीब, परेशान, किसी तरह मेरा पीर मुझे मिल जाए। वो जो एक झलक दिखाई थी वो झलक देखने के लिए बेचैन बेकरार, किसी तरह मैं दोबारा वो देख लूं। बाद रिवायतों में ये आया कि आप उनको तलाश करते करते उस मकाम तक पहुंच गए जहां वो मौजूद थे और उनको मना कर राजी करके ले आए, लेकिन कुछ अरसे बाद वो दोबारा रुपोश हो गए। जब उन्होंने कैफियत देखी ना लोगों की कि लोग उनके खिलाफ बातें कर रहे हैं और दीगर चीज़ें, ताने तिशने, शिकायतें, उनके खिलाफ इल्ज़ाम, बहतान तराजी, दीगर चीज़ें, तो दोबारा फिर खामोशी के साथ रुखसत हो गए। लेकिन मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह की कैफियत ही बदल गई, एक जज्ब की कैफियत आपके अंदर पैदा हो गई। और आलम यह हो गया कि एक दिन एक बाजार से गुजर रही अपने ही शहर कोनिया में, तो एक बुजुर्ग थे जिनका नाम था सलाउद्दीन ज़रकोब रहमतुल्लाह अलैह, चांदी कूटा करते थे। चांदी होती ना उसको कूटा जाता है फिर उसके वरक बनते हैं, तो दुकान पर बैठे चांदी कूट रहे हैं और मौलाना रूम बाजार से गुजर रहे, उस कूटने की आवाज पर इन्होंने जिक्र शुरू कर दिया। इन्होंने वो जो आवाज ठक 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 जो पैदा हो रही थी उसी आवाज के साथ जिक्र शुरू कर दिया, और जिक्र करते करते ऐसी कैफियत हुई कि वहीं बाजार में ही रक्स शुरू कर दिया। उधर उन्होंने देखा सलाउद्दीन ज़रकोब रहमतुल्लाह अलैह ने कि मेरे इस कूटने की जो आवाज पैदा हो रही है उस आवाज से मौलाना पर कैफियत तारी हो गई। उन्होंने उसको रोका नहीं, कूटते रहे, हालांकि चांदी बिल्कुल कूट चुकी थी, उसको अब छोड़ देना चाहिए था। उन्होंने इतना कूटा कि सारी चांदी जाया कर दी, सिर्फ इसलिए कि कहीं इनकी कैफियत खत्म ना हो जाए। अल्लाह वालों की कैफियत अलग है, हर चीज में अल्लाह का जिक्र करते, हर चीज में अल्लाह का जिक्र करते। मेरे वालिद गिरामी अशरफ अल मशाइख हजरत अबू मोहम्मद शाह सैयद अहमद अशरफ अशरफी अल जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते थे कि जब ट्रेन से सफर करते थे तो फरमाते थे ट्रेन की आवाज के साथ साथ मैं जिक्र करता था। आवाज आती है ना चलने की, उसके साथ साथ जिक्र करता था। तो फरमाते जब लाइन चेंज होती थी, पटरी बदलती थी, तो मेरा जिक्र भी बदल जाता। बताओ अल्लाह वालों की शान देखो, कोई बैठा हुआ गाने सुन रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई सो रहा है, अल्लाह का वली ट्रेन की आवाज के साथ जिक्र कर रहा है। कितनी रहमतें नाजिल होती होंगी उस ट्रेन पर, कितनी बरकतें नाजिल होती हूँ। तो अल्लाह वाले हर चीज में जिक्र करते हैं। चांदी कूटने की आवाज, अब आप कहेंगे इस आवाज में क्या है भाई, ठक ठक आवाज आ रही है ना, इसमें क्या है, हजारों लोग सुनते हैं। लेकिन जिसके दिल में इश्क़े इलाही की आग रोशन हो, जिसका दिल इश्क़े इलाही में डूबा हुआ हो, वो उस आवाज पर भी अल्लाह का जिक्र करता, और ऐसा जिक्र किया कि उसी में ही महव हो गए। और मौलाना सलाहुद्दीन, शेख सलाहुद्दीन ज़रकोब रहमतुल्लाह अलैह ने पूरी चांदी जाया कर दी, इसलिए कि इनकी कैफियत खत्म ना हो जाए। कूटते रहे, उधर मौलाना रक्स करते रहे, अल्लाह का जिक्र करते रहे, और उसके बाद ये उनके साथ हो गए, साथ साथ। फिर यही शेख सलाहुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह 10 साल मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह के साथ रहे, खलवत और जलवत में, ऐसी दोनों में मोहब्बत। आपके वालिद गिरामी का जो विसाल हुआ तो एक बादशाह का एक बाग था, उस बाग में उनको दफन किया गया, सुल्तान बहाउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह। अब इस वक्त जब हम वहां पर पहुंचे और हमने जियारत की है, तो वो पूरा बाग जो है वो आपकी खानकाह में तब्दील हो चुका, बल्कि मौजूदा हुकूमत ने उसको एक म्यूजियम की हैसियत दे दी। वहां पर बाकायदा टूरिस्ट आते हैं, टिकट के लिए खिड़कियां बनी हुई हैं, आप जाएं वहां से टिकट लें, और उसके बाद जो दरवाजे होते हैं उसमें से गुजर के आप वहां पर जाएं, और फिर अंदर जाएं तो वहां बाग भी है, और अंदर जाकर मौलाना का मज़ार भी। और वहाँ जैसे ही दरवाजे में दाखिल होते हैं तो एक बहुत बड़ा टुकड़ा लगा हुआ है जिस पे लिखा हुआ है या हजरत मौलाना, या हजरत मौलाना, और उसके नीचे मौलाना जामी रहमतुल्लाह अलैह का एक शेर लिखा, काबतुल उशाक बाशद ई मकाम, काबतुल उशाक बाशद ई मकाम, काबे के आशिक इस मकाम पर पहुंच गए, हर के नाकिस आमद ईजा शुद तमाम। ये वो मकाम है कि जो भी नाकिस यहां पर आएगा कामिल होकर जाएगा। मौलाना जामी का शेर, मौलाना रूम के दरवाजे में दाखिल हो तो वहीं लिखा हो। अब उन्होंने एक कैफियत ये कर दी है, वहां पर हमने देखा कि लोग जूते पहन के अंदर जा रहे हैं, बड़ा हैरान हुआ कि ये जूते पहन के क्यों जा रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि नहीं, ब्लू रंग के शॉपर जैसे होते हैं ना हमारे यहाँ, इस तरह के उन्होंने जूतों के कवर से बनाए, उसके अंदर डोरी है, जब आप वहां पर जाएं तो दाखिल होने से पहले वो जो सिपाही वहां खड़ा है वो आपको दे देगा, आप अपने जूतों के ऊपर चढ़ा लें और फिर अंदर चले जाएं। हमने कहा अच्छा, खैर हमने भी जूतों पर चढ़ाए और अंदर चले गए। तो वहां पर जैसे ही हुजरे में दाखिल हो तो दाएं जानिब एक चबूतरा है जो 4 फीट बुलंद है, उस चबूतरे पर मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह का मजार, जो कोहान की शक्ल में और सब्ज रंग की चादर उस पर चढ़ी हुई, काफी ऊंचा मजार है। और आपके पहलू में थोड़ा सा आगे जाकर आपके वालिद सुल्तान बहाउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह का मजार, और वहीं पर आपके खानदान के दीगर अफराद के मजार, और उसी चबूतरे पर खुरासान के 6 वलियों के मजार। यानी वो पूरा हुजरा जो है वो एक अजीब कैफियत अपने अंदर लिए हुए, बड़े बड़े जलील कदर बुजुर्ग वहां पर लेटे हुए आराम फरमा। वहां हमने हाजिरी दी, अपने बुजुर्गों का सलाम पेश किया, मौलाना की बारगाह में सलाम पेश किया, और उस पूरे हुजरे को उन्होंने एक म्यूजियम की हैसियत दे दी। किसी जमाने में वो एक खानकाह थी, लोग जाते थे, सलाम पेश करते थे, नात खानी का सिलसिला होता था, महफिलें होती थी। अब वो कैफियत थोड़ी सी बदल गई। उन्होंने जगह जगह उस हुजरे में बड़े से जैसे फ्रेम शीशे के होते हैं, उसके अंदर मौलाना रूम के तबरुकात रखे हुए हैं। कहीं आपकी टोपी रखी है, कहीं आपका जुब्बा जो है वो रखा हुआ है, आपका कुर्ता रखा हुआ है, सदरी रखी हुई है, मौलाना रूम की लाठी असा जो था वो रखा हुआ है, काफ़ी चीज़ें, और मसनवी शरीफ के नुस्खे रखे हुए उस ज़माने के, जो कलमी नुस्खे हैं वो भी उन्होंने महफूज करके रखे। पूरा एक म्यूज़ियम, एक बड़ा सा हॉल बना रखा। और जब वहाँ से घूम कर जाएं तो एक और 4 फीट ऊंचा चबूतरा है, वो 4 दीवारी के अंदर, और हमने देखा तो एक मेहराब बनी हुई। भाई मेहराब किस चीज़ की? उन्होंने बताया कि ये उस ज़माने की मस्जिद है, मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह की छोटी सी मस्जिद है। लेकिन अब वहाँ भी उन्होंने कोई कालीन वगैरह कुछ नहीं बिछाया, लोग जूते लेकर जाते हैं, लेकिन जूतों पर वही शौपर चढ़ा के, और वहाँ भी कुरान करीम के नुस्खे रखे हुए हैं जो शीशे के बॉक्स के अंदर। बस आप उनकी ज़्यारत कीजिए और वहाँ से ज़्यारत करके दूसरी तरफ से बाहर निकल जाएं। और बाहर की तरफ दरवेशों के हुजरे हैं, जिस तरह के खानकाह में हुजरे होते हैं ना, इस तरह के उस ज़माने के, जो इस बात को जाहिर करते हैं कि मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में जो फ़ुकरा वहाँ पर आते थे, आप उन हुजरों में ठहराते थे और उनकी बाकायदा तरबियत करते थे। लेकिन अब उनको भी म्यूज़ियम का दर्जा दे दिया गया। उसमें भी वहाँ के उस ज़माने के सलातीन के इस्तेमाल करदा चीज़ें हैं, क़ुरान करीम के नुस्खे हैं, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर रखी हुई। बार सूरत मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हाज़री देकर बड़ा कैफ़ व सुरूर हासिल हुआ। वहाँ का मज़ा, वहाँ की कैफियत दीगर मकामात से बिल्कुल मुख्तलिफ। अगर आप कभी जाएँ तो आप महसूस करेंगे कि दीगर मकामात पर और मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार मुबारक पर आप जाएंगे तो कल्बी सुकून महसूस होगा और एक अजीब सी कैफियत आ रही होगी, जो इस बात को जाहिर करती है कि ये मज़ार खाली नहीं है, इसके अंदर कोई मर्द करंदर आराम कर रहा। आपकी हयात मुबारका में 40 रोज कूनिया में जलजला आया। कूनिया जो आपका शहर है उसमें 40 रोज तक जलजला आया। लोग परेशान हो गए, यानी एक दो झटके लगे तो परेशान हो जाते हैं, यहां तक कि 40 रोज कुछ वक्फा हो जाए फिर दोबारा आए, फिर कुछ दिन वक्फा हो जाए फिर आए। 40 रोज इस तरह हुआ। लोग गए मौलाना रूम के पास, मौलाना ये क्या कैफियत है, दुआ फरमाइए, कुछ कीजिए, कूनिया में जलजला आ रहा। फरमाया जमीन भूखी है, लुकमाए तर चाहती है। लोगों के समझ में नहीं आया, जमीन भूखी है, लुकमाए तर चाहती है। फिर फरमाया इंशाल्लाह जल्द कामयाब होगी, यानी इसको लुकमाए तर मिल जाएगा। उसके कुछ दिन के बाद ही मौलाना की तबीयत खराब हो गई और चंद दिन बीमार रहकर आपका विसाल हो गया। ये लुकमाए तर तो अल्लाह तबारक व ताला ने उनको बड़ी अजीम व शान बातनी हुकूमत और सल्तनत अता फरमाई। आपके ज़माने मुबारका में चंगेज़ खान ने फौज भेजी और अपने नाइब को भेजा कि जाओ इस शहर को तबाह कर दो। اور جو لوگ تاریخ سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ چنگیز خان کا لشکر جس شہر میں گیا اس کو تباہ کر دی، کھوپڑیوں کے مینار تعمیر کر دی، انسانوں کو ختم کر دیا، یہاں تک کہ شہر کو بھی مسمار کر دی۔ ایسے ظالم لوگ، زندہ تو کسی کو چھوڑا نہیں، جو گھر بچے ان کو بھی توڑ کے رکھ دیا، اور کھوپڑیوں کے مینار۔ تو ان کی ایک ہیبت، ایک جلال، ایک رعب لوگوں کے اوپر، وہی لشکر مولانا کے شہر میں آ گیا۔ اب جب لوگوں نے سنا ہلاکو خان کا لشکر آ گیا، اور آ کر اس نے پڑاؤ ڈال لیا، خیمے لگا دیے، اب لوگوں کے تو پیروں تلے زمین نکل گئی، کیا کریں کیا کریں۔ ابھی تک خبریں مل رہی ہیں کہ یہ لشکر جہاں بھی جاتا ہے کھوپڑیوں کے مینار تعمیر کر دیتا ہے، شہروں کو مسمار کر دیتا ہے، تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اب یہ شہر میں آ گیا، اب کیا ہوگا؟ مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ سب کے سب مل کر مولانا روم کی بارگاہ میں، مولانا آپ کا زمانہ ہے، اللہ سے دعا کریں، اس شہر کو بچائیں۔ فرمایا کیا ہوا؟ ارے ہلاکو خان لشکر لے کر پہنچ گیا ہے شہر کی سرحد پر، پڑاؤ ڈال لیا، خیمے لگ گئے ہیں، ہو سکتا ہے آج یا کل اس شہر پہ حملہ ہو جائے، اور جب حملہ ہوگا تو آپ کو نتیجہ پتا ہے، جو یہ پیچھے کر کر آئے ہیں وہی آگے بھی کریں گے، کھوپڑیوں کے مینار تعمیر کریں گے، شہر کو مسمار کریں گے، قتل عام کریں گے۔ مولانا نے فرمایا پھر میں کیا کر سکتا ہوں؟ ارے ہم آپ کے پاس آئے ہیں، آپ اللہ سے دعا کریں، اس شہر کو بچائیں۔ مسکرائے، فرمایا اچھا، اپنی تسبیح اٹھائی، مسلح کندھے پہ رکھا، چل پڑے۔ لوگ دیکھ رہے ہیں مولانا کہاں جا رہے ہیں، چنگیز خان کے لشکر سے مقابلہ کرنے کے لیے ایک تسبیح، ایک مسلح، بس کندھے پہ مسلح، ہاتھ میں تسبیح، کہاں ہے لشکر، کہاں وہاں چلے جا رہے ہیں۔ لوگ تو ڈر کے مارے پیچھے ہٹ گئے، اب مولانا کی بھی خیر نہیں، یہ تو ان کو آتے ہوئے دیکھیں گے، وہیں ختم کر دیں گے۔ مولانا روم نے جا کر لشکر کا جائزہ لیا، ایک طرف لشکر کا پڑاؤ تھا، خیمے لگے ہوں، اور اس کے بالکل سامنے ایک اونچا سا ٹیلا تھا، انہوں نے وہاں جا کر مسلح بچھایا، تسبیح رکھی اور نیت باندھ کے کھڑے ہو، نفل شروع کر دی۔ اب جب یہ کیفیت ہوئی، لشکر والوں نے دیکھا، رہی یہ کون صوفی صاحب آ کے یہاں کھڑے ہو گئے، یہ مسلمان صوفی، اس کی یہ جرت۔ جا کر اپنے سپہ سالار کو بتایا، وہ فوراً اپنے خیمے سے نکلا، کیا ہوا؟ یہ دیکھو سامنے کون ہے۔ اس نے دیکھا، قیام، رکوع، سجود، سلام پھیرا، پھر نیت باندھی، پھر قیام، رکوع، سجود، پھر سلام پھیرا، پھر نیت باندھی۔ ارے یہ مسلمان کی یہ جرت، میرے لشکر کے سامنے آ کر یہ اپنی عبادت کرے، کیسے ہو سکتا ہے؟ چلاؤ تیر، کمان پہ چڑھا دو اور اس کو ختم کر دو۔ بلایا، اس نے تیر چلایا، کمان پہ چڑھایا، تیر سیدھا مولانا کی سیدھ میں گیا، اور قریب جا کر ادھر مڑ گیا۔ بڑا حیران ہوا، اس نے کہا دوسرا چلاؤ، دوسرا چلایا، پھر وہ سیدھ میں گیا، جا کر وہ بائیں مڑ گیا۔ ہلاکو خان اپنے سپہ سالاروں کو دیکھ رہا ہے، تمہارا نشانہ صحیح نہیں ہے کیا؟ کہا آج تک تو نشانہ خطا نہیں ہوا، آج پتہ نہیں کیا مسئلہ، دوسرے کو بلاؤ، تیرا نشانہ صحیح نہیں ہے۔ اس نے آیا، نشانہ لیا، کمان پہ چڑھا کر تیر چلایا، وہی کیفیت ہے، سیدھا جاتا ہے مولانا کی سیدھ میں، قریب جا کے ادھر مڑ جاتا، دائیں مڑ گیا یا بائیں مڑ گیا، مولانا نے دیکھا بھی نہیں پیچھے مڑ کے کیا ہو رہا ہے، انہوں نے سلام پھیرا، پھر نیت بند، قیام، رکو، سجود۔ اس کو بڑا غصہ آیا، ہٹ جاؤ سب، میرا نشانہ آج تک خطا نہیں ہوا ہے، لاؤ مجھے دو تیر کمان۔ اس نے اپنے کمان پہ تیر چڑھایا اور کہا مجھے ناز ہے آج تک میرا نشانہ خطا نہیں گیا، یہ مسلمان صوفی کیا حیثیت رکھتا ہے، ایک ہی تیر میں اس کا کام تمام۔ چڑھا کر جیسے ہی چلایا، وہی کیفیت ہے، تیزی میں تیر جاتا ہے اور بائیں جانے مڑ گئے، جیسے کسی نے پکڑ کے مڑ دیا۔ بڑا حیران ہوا، دوسرا تیر چلایا، پھر یہی کیفیت۔ اچھا ایک اور ترکیب کرتے ہیں، یہ ایسے نہیں مانے گا صوفی۔ چار گھوڑے منگائے، ان کے اوپر اپنے سپاہیوں کو سوار کیا، کہا یہاں سے ایڑ لگاؤ اور گھوڑے دوڑاؤ تیزی میں، اور اس کو رونتے ہوئے گزر جاؤ۔ इसके ऊपर से गुजर जाओ, फिर देखो क्या होता। ठीक है, सब खड़े घोड़े लेकर खड़े हैं, इजाजत है, इजाजत है, रुकना नहीं है। इस मुसलमान सूफी को घोड़ों के टापों से रोन दो, खत्म कर दो। खड़ा हो गया देखने के लिए, वो चार घोड़े सवार खड़े हुए, उन्होंने दौड़ाया, तेजी में गए मौलाना के करीब। जैसे ही करीब पहुंचे, सबके सब औंधे मुंह नीचे, औंधे मुंह नीचे गिर गए। तब जब उसने ये देखा, अब उसकी कुछ अकल ने काम किया, आंखों से जब देख लिया, पहले तो तीरों का करिश्मा देख लिया था, और जब घोड़ों का देखा कि मेरे सामने गए हैं, और करीब जाके सबके सब औंधे मुंह गिर गए, मौलाना ने देखा ही नहीं पीछे मुड़ के, वो अपने कयाम सुजूद में लगे हुए। इसने कहा वापिस आ जाओ, वापिस क्या हुक्म है? हुक्म ये है, खेमे उठाओ और चलो यहां से। कहा क्यों? कहा सुनो, जब तक हमारा मुकाबला दुनियावी ताकत रखने वालों से था, हमने ईंट से ईंट बजा दी, खोपड़ियों के मीनार तामीर कर दिए, लेकिन अब एक रूहानी ताकत वाले से वास्ता पड़ गया है, इससे मुकाबला नहीं हो सकता, चलो वापिस। खैरियत इसी में है कि वापिस चलो। सब ने जल्दी जल्दी खेमे उठाए, लश्कर वापिस रवाना हुआ। इधर लश्कर रवाना हुआ, इधर मौलाना ने दुआ की, मौलाना ने सलाम फेरा, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, तो इधर भी सलामती थी, इधर भी सलामती थी। मुसल्ला उठाकर कंधे पे डाला, तस्बीह हाथ में ली, वापस अपने हुजरे में आकर बैठ गए। ये मुकाबला किया चंगेज खां के लश्कर से, ना कोई तीर चला, ना तलवार उठाई, ना नेजा और भाले लेकर गए। बता दिया कि देखो रूहानी ताकत में कमाल है, रूहानियत में कमाल है, ताकत है, और जो रूहानी ताकत रखता है, मादी ताकत वाले उसका मुकाबला नहीं कर सकते। आकर अपने हुजरे में बैठ गए। तो ये है मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह की शान, आपने अपनी जिंदगी ही में बता दिया। और आपकी मसनवी शरीफ, उसकी मकबूलियत ये है, फरमाते हैं कि मैंने देखा कि नबी पाक अलैहिस्सलाम इस किताब को लिए बैठे हैं, और फरमाते हैं जैसी ये किताब है, इसकी मिसल कोई दूसरी किताब नहीं, कोई सरकार ने भी उसे पसंद फरमाया। इल्म दीन हासिल करने के बाद, उलूम और फनून का मरकज बनने के बाद, हजारों शागिर्दों का उस्ताद बनने के बाद, और तमाम उलूम और फनून पर मुकम्मल दस्तरस हासिल करने के बाद, जब हजरत शम्स तबरेज रहमतुल्लाह अलैह की गुलामी में आए, तो पुकार उठे मौलवी हरगिज न शुद मौलाए रूम ता गुलाम शम्स तबरेजी न शुद। मौलवी मौलवी नहीं बन सकता जब तक कि शम्स तबरेज का गुलाम ना बन जाए। सब कुछ छोड़ दिया, उनकी गुलामी इख्तियार कर ली। पहले सिर्फ काल था, फिर हाल हो गया। अगर हाल ये हो जाए तो फिर इंसान की कैफियत ही बदल जाती। तो हमारा भी हाल है और उनका भी हाल था, लेकिन हमारा तो बुरा हाल है, बुरा हाल है ना। अहलुल्लाह जो हैं अल्लाह वाले, उनका हाल ही अलग। जब उन पर वो कैफियत तारी होती है तो वो बेहिजाबाना तमाम चीज़ों का मुशाहिदा करते हैं। अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से अनवार व तजल्लियात की बरसात होती है उनके ऊपर, और उनका कल्ब आईने की तरह रोशन होता है, और जब कल्ब रोशन होता है तो यार के जलवे नजर आ जाते। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह ने पूरी जिंदगी इसी चीज़ में गुजारी, और आज भी इतना अरसा गुजर जाने के बाद उनकी मसनवी और मसनवी की तमाम हिकायात ऐसी हैं कि आज भी अगर आप पढ़ें तो उनसे सबक हासिल किया जा सकता है। मौलाना रूम फरमाते हैं कि एक आदमी कश्ती में सफ़र कर रहा था, अपनी हिकायत में बयान किया मसनवी में, और उसके साथ एक तो वो होता है ना कश्ती चलाने वाला, मल्ला जिसे कहें या कप्तान कहें या नाखुदा कहें, जो भी आप कहें, तो एक नहव इल्मे नहव पढ़ने वाला वो उसमें बैठ गया। उसने पूछा उस कश्ती चलाने वाले से, मियां तुमने नहव पढ़ी है? सर्फ और नहव होती ना, तुमने नहव पढ़ी है? कहा नहीं, मैं नहीं जानता नहव क्या है। तुमने तो अपनी आधी जिंदगी बर्बाद कर दी, अपने इल्म पर नाज था ना, मैं तो नहब जानता हूं, तुमने नहीं पढ़ी, कहा नहीं, तुमने आधी जिंदगी बर्बाद कर दी। मियां नहब पढ़ो, अरबी की ग्रामर है ये नहब। उसने कहा अच्छा, खामोश हो गया। थोड़ी सी कश्ती आगे चली, तूफान आ गया, कश्ती इधर उधर झूलने लगी, उलटने के करीब हो गई। अब कप्तान ने पूछा आपको तैरना आता है, कहा नहीं, कहा मैंने तो आधी जिंदगी बर्बाद की, आपकी तो पूरी गई। सही बात है ना, ताना दिया था ना कि तुम्हें नहव नहीं पड़ी तो तुम्हारी आधी जिंदगी बर्बाद हो गई, कहा आपकी तो पूरी बर्बाद हो गई। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं सिर्फ नहव ही नहीं करो, महव करो, महव मिटाओ। महव के माना मिटाओ, खताओं को मिटाओ, गुनाहों को मिटाओ, लग्जिशों को मिटाओ, सारी चीजों को महव कर दो, अपने आप को महव कर दो, खत्म कर दो अल्लाह की जात में, तब जाके कुछ हासिल होगा। दूसरा सबक ये देते हैं कि किसी को कमतर ना समझो। मैं ये जानता हूं दूसरा नहीं जानता, भाई दूसरा कुछ और जानता है। तुम अगर नहीं जानते, तुम जानते हो दूसरा नहीं जानता, तो वो दूसरा कुछ और जानता है। उसने कहा नहीं मैं जानता हूं, तूने आधी जिंदगी बर्बाद कर दी, नहब नहीं जानता। इसने कहा मेरी तो आधी, तेरी तो पूरी गई, तैरने ही नहीं जानता, कश्ती उलटने वाली है। तो मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं किसी को कमतर ना समझो, अपने आप को हर एक से बरतर ना समझो, कमतर समझो अपने आप। मैं ये जानता हूं दूसरा नहीं जानता, नहीं, हर आदमी कुछ ना कुछ जरूर जानता, और हर आदमी से कुछ ना कुछ सीखा जा सकता है। हम कहते जाहिल आदमी है क्या है, नहीं, उससे भी सीखा जा सकता। किताबें पढ़ते हो, इंसानों को भी पढ़ो। किताबें पढ़ी जाती है ना, उससे इल्म आता है, इंसानों को पढ़ो, उससे भी सीखा जा सकता। इंसानों को पढ़ो, उससे भी सीखा जा सकता है। चेहरों को पढ़ो, उससे भी सीखा जा सकता है। और अगर तुम्हारा दिल रोशन हो जाए तो लोगों के दिलों को पढ़ो, उससे भी सीखा जा सकता। शेख सादी रहमतुल्लाह से पूछा अदब किससे सीखा, फरमाया बेअदबों से। हैं बेअदबों से, फरमाया हाँ, मैंने बेअदबों से अदब सीखा। पूछने वाले ने पूछा कैसे, फरमाया जो चीज मैं उनके अंदर देखता गया, अपने अंदर से कम करता गया, मैं बेअदब बन गया। जो उनके अंदर देखे अपने अंदर से कम कर दी, बेअदब बन गया। तो सीखने वाला तो ऐसे भी सीख सकता है, और नहीं सीखने वाला तो नशिश में आकर भी नहीं सीख सकता। तो इसलिए सीखो, सीख, सारी उम्र इंसान सीखता है, सारी उम्र इंसान, कोई इंसान कामिल नहीं है। महत से लहत तक सीखो, झूले से कब्र तक सीखो, सीखते रहो सीखते रहो। उसके बाद भी कुछ नहीं सीखा, उसके बाद भी यही कहो कि मैं कुछ नहीं जानता। बल्कि वो किसी का मकूला, बड़ा प्यारा मकूला था कि मैं ये जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता, मैं ये जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता। कहते नहीं मैं जानता हूं, कोई जाहिर इल्म हासिल कर ले कि मैं जानता हूं, तो उसने बातिनी इल्म कहां हासिल किया। इल्म की तो कोई हद नहीं, इल्म जाहिर, इल्म बातिन, इल्म लदुन्नी, कितनी चीजें हैं। कहने का मकसद ये है कि मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह छोटी छोटी हकायतें बयान करते हैं और उसमें बड़े बड़े सबक इंसान को सिखा देते। तो आज हमने उनके मुतालिक इसलिए बयान किया कि 5 जमादुसानी 1273 ईस्वी और 672 हिजरी में शहरे कूनिया में, जो तुर्की में है, मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह का विसाल हुआ। वहीं उनका मज़ार मुबारक है। अल्हम्दुलिल्लाह हमें उन्हें उनकी मज़ार मुबारक की ज़ियारत का शरफ हासिल हुआ, वहाँ सलाम फेरने का, सलाम पेश करने का शरफ हासिल हुआ और उनके फ्यूज़ बरकात हासिल किए। उनका जिक्र मुबारक इसलिए किया कि जहाँ सालेहीन का जिक्र है वहीं रहमतों का नुज़ूल। अल्लाह तबारक व ताला उनके फैज़ान को जारी उसारी रखे और हम सबको भी उनके मज़ार मुबारक पर हाज़िरी की तौफीक अता फरमाए। आइए दुआ करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे सगीरा व कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा, या अल्लाह हमारी नमाज़ों को कबूल फरमा, या अल्लाह हमारे सजदों को कबूल फरमा, या अल्लाह जो बीमार हैं उन्हें शिफाए कामिल अता फरमा, जो किसी परेशानी में मुब्तला है उनकी परेशानियों को दूर कर, जो कर्ज़दार हैं उन्हें बारे कर्ज़े से दोषी फरमा, जो बे औलाद हैं उन्हें नेक औलाद अता फरमा, जो साहिब औलाद हैं उनके औलाद को उनका फरमाबरदार बना। ऐ रब्बुल आलमीन ये तमाम हजरात और ख़वातीन जो दूर दराज मकामात से इस नशिस्त में शिरकत करने के लिए हाजिर हुए, मौला इन सब की हाज़िरी को कबूल फरमा। ان سب پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرما، ان کے علم میں عمل میں عمر میں برکت عطا فرما، ان کے روزگار میں ترقی عطا فرما، ان کی ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریوں کو پریشانیوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاۃ دائمۃ بدوام الملک الحی القیوم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔